श्लोक संख्या सात अध्याय दो श्लोक संख्या कार्पण्य दोषोपता स्वभाव कार्पण्य दोषोपता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संरचित श्रेयसानिश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यास्तहंसादीनां त्वां प्रपन्नम् अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातम् सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की। प्रभुपाद महाराज मूर्ख की भी व्याख्या कर रहे हैं, शिष्य की भी व्याख्या कर रहे हैं, गुरु की भी व्याख्या कर रहे हैं। मूर्ख को भी जानना बहुत जरूरी है ना। कौन मूर्ख है? इस प्रकार से इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि अर्जुन को क्या समझ में आया। अभी तक तो अर्जुन क्या बोल रहे थे और अब क्या समझ में आया। अर्जुन को निश्चित ही कुछ और समझ में आया है इस श्लोक में, कुछ विशेष बात अब अर्जुन को समझ में आ रही है। अब वो क्या कह रहे हैं अर्जुन? मैं अपना कर्तव्य भूल गया। बात यह है कि वो समझ गए कि जब तक व्यक्ति यह समझता है कि वो सब जानता है तब तक वो सत्य नहीं जानता। अभी तक अर्जुन धर्म की व्याख्या कर रहे थे, अभी तक अर्जुन बता रहे थे कि धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, ये सब। इस प्रकार से अनेक व्याख्याएं अर्जुन ने की धर्म की, कई सारी व्याख्या बताई कि ऐसे करेंगे तो पाप लगेगा, हमको सुख प्राप्त नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसी अनेक बातें अर्जुन ने बताई। अब तक अर्जुन ये समझ रहा था कि वो सब कुछ जानता है, सब जानता है और इसलिए वो जो जानता है वही वो करेगा। परंतु यहां कुछ अर्जुन के भाव थोड़े बदले हुए लगते हैं। अब अर्जुन ये सोच रहे कि शायद वो जो कुछ भी जानते हैं वो सब कुछ नहीं है। तो यहाँ अर्थ ये निकलता है कि जब व्यक्ति ये समझता है कि जो कुछ भी वो जानता है वो कुछ भी नहीं जानता, तब जाके उसको सत्य का ज्ञान हो सकता है। लेकिन जब तक वो ऐसे समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं सर्वज्ञ हूँ, तब तक वो व्यक्ति सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसका कारण ये है, अभी तक अर्जुन बात कर रहे थे और भगवान कृष्ण सुन रहे थे। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान है, सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ है, भगवान परम सत्य है। लेकिन परम सत्य कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अभी तक अर्जुन ये समझ रहे हो सब जानता है। भगवान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं कर रहे, कुछ बोल नहीं रहे। इतनी सारी बातें अर्जुन कह रहा है लेकिन भगवान कुछ नहीं बोल रहे। इसका कारण ये है क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि वो अर्जुन समझ रहा है, वो सब कुछ जान रहा है। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं। यदि हमको सत्य जानना है तो नित्य समझ ही नहीं जानते हैं। वास्तव में यदि हम इस बात को तुलना करें कि हमारे पास जितना ज्ञान है और जितना अज्ञान है, तब हमारे पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान से हमारे पास जितना अज्ञान है उसकी तुलना करें तो क्या पता चला? किलो में बताइए कितना किलो ज्ञान है और कितना किलो अज्ञान है, कितना है? मतलब किलो में बताइए ना। सही कहे तो मुझे एकदम सही कहे। 100 किलो अज्ञान है और 1 ग्राम हो सकता है ज्ञान है, क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। अदरवाइज वो भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि ये नहीं है तो समझना चाहिए 0, 1-0। इस प्रकार से भगवान अभी तक कुछ नहीं बोले, अर्जुन समझ रहे, सब जानते हैं, बोलते जा रहे। जब ये श्लोक अर्जुन कहते हैं तो इसके पश्चात भगवान बोलना शुरू करते हैं। अब इस श्लोक में अर्जुन भगवान को गुरु भी कहते हैं, मतलब मेरा शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए ऐसा कहते हैं, और तब जाके भगवान बोलना शुरू करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि गुरु श्री गुरुदेव तभी ज्ञान देते हैं जब वो ये समझते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का क्वालिफिकेशन, गुण, क्वालिटी इस व्यक्ति में है। जब तक इस व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त करने की गुण या तैयारी वो व्यक्ति नहीं करता, तब तक भगवान या श्री गुरु ज्ञान नहीं देते। भगवान कृष्ण इसमें अर्जुन को रोक सकते थे यदि चाहते। पूरा 1 अध्याय अर्जुन ने तो बोला, 36 श्लोक, उसमें से 4-5 इधर उधर, 40 श्लोक तो लगभग अर्जुन ने बोला सारे आर्गुमेंट। भगवान भीष्म रोक सकते थे, क्या बोल रहे हो, बस करो। और एक बार बोले भी भगवान, क्या बात कर रहे, तुम्हारे जैसा व्यक्ति ऐसी बात कर रहे, बस इतना ही बोले। लेकिन ज्ञान देना शुरू नहीं किया। ज्ञान कब देना शुरू किया? जब अर्जुन ने यह श्लोक बोला, कार्पण्य घोष। यदि ये श्लोक नहीं होता, अर्जुन यदि ये श्लोक नहीं बोलते तो आज हमारा क्लास भी नहीं होता, क्योंकि भगवान भगवत गीता ही नहीं बोलते। और भगवान गीता नहीं बोलते भगवान तो फिर मुश्किल हो जाता। तो ज्ञान दिया नहीं जाता, ज्ञान लिया जाता है। वो दे नहीं सकता है, चाहे इतने संत है पूरे संसार में, इतने संप्रदाय, इतने संत महात्मा आचार्य गण है, तो ज्ञान तो देने के लिए तत्पर है। वो क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान नहीं देना है, वो तो देने के लिए बैठे हैं। पर वास्तव में ज्ञान दिया नहीं जाता है, ज्ञान लिया जाता है। कोई मानता है कि आप मुझे बताओ, आप वास्तव में तभी उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तभी ज्ञान दिया जा सकता है। बिना मांगे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, मांगना पड़ेगा। मांगने का तरीका है, पद्धति है, किस प्रकार से ज्ञान है। वस्तुओं का मांगने का तो आदत है, उनको वस्तुओं को मांगने का आदत है। हे भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, धन दे दे, शरीर स्वस्थ दे दे, जन्म देनी जन्म देनी, भगवान ये दो वो दो, फलाना ठिकाना है ना, नारियल फलोते फलोते, ये सब 100 रुपया चलाओ तो ये मिलेगा, 11 रुपया चलाओ तो वो मिलेगा, 1000 रुपया चलाओ तो ये मिलेगा, इस प्रकार ये सब आदत तो है। पर ज्ञान मांगने से आदत है क्या? कभी बोलते हैं भगवान ज्ञान दे, दर्शन ज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवान आपको समझने का ज्ञान मुझे दे। अर्जुन मांग रहे ज्ञान इस श्लोक, लेकिन गुरु के पास जाके ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान को मांगना, या शिष्य कृपा करके मुझे शिष्य का शिष्य के रूप में स्वीकार करो, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि हमारे गुरु महाराज या हमारे भगवान हमको जो आज्ञा देंगे, जो सेवा देंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जिम्मेदारी जो हमको देंगे, वो निभाने का है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान हमको दे रहे हैं उसका स्वीकार करना, बहुत बड़ी बात। भगवान के ज्ञान को प्राप्त करना, भगवान को कहना कि हे भगवान मुझे ज्ञान दो, इसका अर्थ ये होता है कि भगवान हमको जो जिम्मेदारी देते हैं, या श्री गुरु जो हमको जिम्मेदारी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसका स्वीकार करना। यहाँ पे अर्जुन मांग रहे हैं ज्ञान, शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार करो कह रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन ये बोल रहे हैं कि आप मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे उसका मैं स्वीकार करता। हम लोग बोल सकते रोज गिरधारी मंदिर में जाके, शिष्य राणा गिरधारी मंदिर में जाके भगवान को, भगवान आप जो भी जिम्मेदारी देंगे मैं इसका स्वीकार करता, कृपा करके मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ सेवा दो। कौन बोल सकता है ऐसे? मुझे भी जन्माष्टमी हो रही है, जन्माष्टमी में सेवा बहुत जरूरी है, तो कौन बोल सकता है कि भगवान मुझे आपका ज्ञान दो, भगवान मुझे सेवा दो? आई कैन एक्सेप्ट, मैं आपकी जो भी आप जिम्मेदारी देंगे आई विल एक्सेप्ट, मैं उसका स्वीकार करता हूँ। हरि बोल बोलिए, कौन करेंगे स्वीकार सेवा का? बोल हरि बोल, इतना श्लोक प्रसाद का कौन कौन स्वीकार करेंगे? परसों मंदिर में कुछ दिन पहले मीटिंग हुई तो मंदिर में कहा गया कि जो भी फेस्टिवल होता है उस फेस्टिवल में अभिषेक या प्रवचन या कीर्तन के समय बहुत कम भक्त लोग होते हैं, और प्रसाद के समय हॉल कम पड़ जाता है, डबल लोग प्रसाद का हम बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, क्योंकि अच्छी बात है। प्रभुपाद कहते प्रसाद मतलब कृपा, तो भगवान की सेवा का स्वीकार करना ही भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने जैसा है। भगवत ज्ञान या आत्म ज्ञान प्राप्त करना मतलब भगवान की सेवा का स्वीकार करना। अब अर्जुन यही कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। इतने 40 श्लोक के बाद उनको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, अब वो धीरे धीरे विचारधारा उनसे बदल गई है। अब वो कहते हैं, आप देख सकते हैं कि ऐसी सेवा या ऐसी जिम्मेदारी इसके पहले भी बहुत भक्तों ने स्वीकार की, वाल्मीकि, वाल्मीकि ऋषि है ना, कितने विज्ञान, रामायण उन्होंने लिखी है, माता सीता उनके यहाँ रुकी है, या और कुछ भगवान राम जी, अरे अनेक उनकी पूरे पुराणों में और शास्त्र में उनका वर्णन है, जो कितने बड़े श्रेष्ठ मुनिवर है। वो श्रेष्ठ मुनिवर कैसे बने? श्रेष्ठ मुनिवर कैसे बने? वो तो किस कार्य में लिप्त थे आप सब जानते हैं, हमारे से भी डेंजर कार्य करते थे, परंतु उनके गुरुदेव उनके सामने आ गए नारद मुनि और उन्होंने कहा साहब छोड़ दो चुपचाप एक जगह बैठो और हरिनाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम का उच्चारण करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना ये बहुत बड़ी दिव्य सेवा है। जब श्री गुरु ने बता दिया कि ये शिव सेवा है ये करो, उन्होंने स्वीकार किया उस सेवा का, ठीक है स्वीकार कर लिया और एक जगह पर 60,000 वर्ष तक उन्होंने हरिनाम चर्चा हरिनाम 60,000 वर्ष कितना बदल आ गया उनके जीवन, वो कितना शुद्ध हरिनाम लिए और उनके गुरु महाराज ने जो उनको सेवा दी जो जिम्मेदारी दी उसको पूर्ण कहा बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने निभाया, तो क्या हुआ भगवान राम का डायरेक्ट एसोसिएशन मिल गया, भगवान का डायरेक्ट संघ। और इतना ही नहीं, भगवान ने उनको सार लीला दिखाई और भगवान का पूरा चरित्र उन्होंने लिख दिया रामायण। क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्वीकार किया, जिम्मेदारी का स्वीकार किया। अब अर्जुन भी यहाँ पे धीरे धीरे कह रहा है कि मैं भी स्वीकार करूंगा मुझे कुछ जिम्मेदारी पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं उन्होंने सब कुछ उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपना घर सब कुछ खाना पीना श्वास लेना भी रोक दिया, इतनी तपस्या की भाई। उनके शरीर के चारों दिशाओं में एंटीन कहते हैं, एंटी क्या कहते हैं हिंदी में, उसको हिंदी में क्या कहते हैं हिंदी में, इसको तो पता है एंटीन को क्या कहते हैं हिंदी में, गुजराती में क्या कहते हैं रावड़ा राखड़ा। तो इस प्रकार से उनके चारों तरफ रावड़ा बन गया और उसकी वजह से वो इतना भयंकर हो गया कि वो सांस भी नहीं ले सकते थे। इसको कहते हैं सेवा, गुरु सेवा या भगवत सेवा, इसको कहते हैं गुरु सेवा। उनको पता ही नहीं चल रहा था उनको भूख लगी प्यास लगी, बस भगवत भगवान का नाम लेना इतनी बड़ी जिम्मेदारी है बस, और उसी की वजह से वो रामायण लिख पाए। भगवान स्वयं ये तो वाल्मीकि का उदाहरण हो गया है ऋषि के, परंतु स्वतः भगवान सांदीपनी ऋषि की सेवा की, उन्होंने एक दिन अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए गए जंगल में लकड़े लाने के लिए, भयंकर बारिश पूरी रात भर लकड़े लेके बारिश में भीग गए, आ नहीं पाए अंधेरे में रास्ता भूल गए रास्ता, पूरी रात निकाले भगवान साक्षात बता रहे कि गुरु सेवा कैसे, स्वीकार किया गुरु की सेवा का, तो गुरु की सेवा का स्वीकार किया तो पूर्णता से उसको पूरी तरह से निभाया और तब सांदीपनी ऋषि प्रसन्न होते भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गुरु सेवा या भगवत सेवा को स्वीकार करना ही आत्मज्ञान प्राप्त करने का रास्ता है, उसी व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। श्लोक है श्वेता शोक उपनिषद में, यस्य देवः पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। तो जिनको भगवान श्री भगवान और श्री गुरु में पूर्ण श्रद्धा विश्वास होता है उन्हें वैदिक ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त हो सकता, मतलब ये मतलब क्या है श्रद्धा और विश्वास। यदि श्रद्धा और विश्वास भगवान में नहीं है श्री गुरु में नहीं है तो वैदिक ज्ञान पूरे वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। श्वेता श्वेत उपनिषद। तो इस श्लोक में तार्पण्य दोषो प्रभुत स्वभाव पृच्छामित्वाम धर्म संबंध से इसका इस श्लोक का मर्म क्या है, एसेंस क्या है, क्या है समझ। इसका अर्थ, इसका सार ये है कि सबसे पहले यदि अज्ञानता बढ़ जाती है, भ्रम बढ़ जाता है, भौतिक संसार के प्रति और ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। अब यहाँ अर्जुन थक गया, अर्गुमेंट कर करके आप समझ में आया तो कोई इलाज नहीं, तो क्या किया, अभी तक आप मित्र थे ठीक है, अभी मेरा शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, मतलब अभी गुरु बन जाइए, आप गुरु हैं, गुरु के पास जाना चाहिए, भ्रम में नहीं रहना चाहिए ज्यादा समय। बहुत समय तक भ्रम में रहने से व्यक्ति विध्वंसक हो जाता है, तो भ्रमित करने वाली दशा में से जल्दी यदि नहीं निकलते हैं तो हम विध्वंसक बन जाते हैं, समाज के लिए विध्वंस करेंगे तो हमारे परिवार के लिए विध्वंसक हो जाएंगे, किसी के भी लिए नहीं हुए तो स्वयं के लिए विध्वंसक हो जाएंगे। इसलिए भ्रमित अवस्था में ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए, तुरंत श्री गुरु के पास जाना चाहिए। कार्पण, कार्पण्य दोष कार्पण्य, कार्पण्य श्वेता श्वेत उपनिषद बृहद अरण्य के पुराण के अनुसार गोपाल महाराज ने तात्पर्य में लिखा है, कार्पण्य मतलब कृपण, कृपण किसको कहा जाता है, बृहद अरण्य पुराण का गोपाल महाराज ने तात्पर्य में रेफरेंस दिया है, कृपण उसको कहते हैं जो अपने जीवन की समस्याओं को समझता ही नहीं, वो डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, समस्या है लेकिन समझता ही नहीं है, समझता है अपने ही जीवन की, दूसरे के नहीं, तो संसार की समस्या है, हमारे ही अपने जीवन की क्या समस्याएं है, यही जिसको समझ में नहीं आता है उसको कृपण कहा जाता है। फिर दूसरा अर्थ उसी का क्या होता है, जो मनुष्य जन्म का उपयोग, मतलब मनुष्य जन्म का उपयोग जीवन के समस्याओं का निराकरण करने में नहीं करता, मनुष्य जीवन मिला है, साधारण बात है क्या, इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन का उपयोग यह व्यक्ति उसी मनुष्य जीवन की जो समस्याएं है उसका निराकरण, उसको सॉल्व करने के लिए नहीं करता है। मनुष्य जीवन में अनेक समस्याएं है, जैसे कि हमको दिया गया हेलीकॉप्टर, मैंने बताया था ये उदाहरण, हमको हेलीकॉप्टर दिया गया है, प्रभु जी आप हेलीकॉप्टर लीजिए और अपने अच्छे जो बड़े काम है कार्य उसको पूर्ण कीजिए, आपके पास समय का अभाव है, ठीक है ठीक है, हेलीकॉप्टर मिल गया, हेलीकॉप्टर में बैठ के हमें दिल्ली तक जाना चाहिए, अपने सारे काम घंटों में खत्म करना चाहिए, लेकिन हम हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं कहाँ, सब्जी मंडी सब्जी खरीदने के लिए, हेलीकॉप्टर दिया है उसका उपयोग क्या करना चाहिए, सब्जी मंडी जाने के लिए, जो काम बहुत ज्यादा समय ले सकता है, बड़ी गहरी समस्या है, वो दिल्ली में जाके सॉल्व हो सकती है, तुरंत उसमें बैठ के दिल्ली उड़ के जाना चाहिए, तो मिला है हमको उसी के लिए, और हम क्या कर रहे हैं, छोटी मोटी सब्जी मंडी जाके सब्जी खरीदने के लिए हेलीकॉप्टर, लोग हमको क्या कहेंगे, बुद्धिमान क्या कहेंगे, गोपाल महाराज ने वर्चन किए क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, अंतिम में तात्पर्य गोपाल के लिए मूर्ख होते हैं, समझते ही नहीं, ये मूर्खता है। तो इस प्रकार से उस कृपण उसी की व्याख्या वह व्यक्ति को भी कहते हैं जो इस मनुष्य देह का, मनुष्य जन्म का उपयोग अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए नहीं करता है। समस्याएं कौन सी है, देखिए जो ऐसी समस्या, जो समस्या सभी के लिए वही समस्या हो सकती, आप बोलेंगे ऐसी तो अनेक समस्या है, केवल चार ही समस्या है, जन्म मृत्यु जराबाजी, ऐसी बहुत समस्या है, अभी हम कुछ दिन पहले स्टेशन के उतरे, हमने पहले भी इसको बता दें, बहुत पहले की बात है, हम स्टेशन से उतरे, भयंकर बारिश हुई थी, शायद 4-5 बारिश के पहले की बात है, 4-5 वर्ष पहले। स्टेशन से उतरे और बाहर जा रहे थे, बहुत बारिश हुई थी, छाता नहीं था। जैसे बाहर निकल रहे थे, कुछ लोग जो फुटपाथ पे रहते हैं, उन लोग बड़े चिल्ला रहे थे आपस में, बात क्या बारिश आ गई, कितनी समस्या हो, कहाँ रहेंगे, 4 दिन हो गए लगातार बारिश चल रही है, कैसा होगा, इतनी बड़ी भयंकर समस्या हो बारिश आने से। अब हमारे पास भी छाता नहीं था, हम थोड़ा आगे गए, उधर वो एक छाता वाला छाता बेच रहा था, तो उसको हमने बोला भाई कितने का है, ऐसा बात पूछा, बताने लगे। एक व्यक्ति वहीं पे दूसरे व्यक्ति दूसरा कस्टमर आया और बोलने लगा कि अभी तो इतनी ग्राहक है आपके, तो बोले अच्छा है ना सर, इतनी बारिश होगी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, अच्छा है ना, क्या बुरा है, और 100-200 छाते बीचे देखे बेचे जाएंगे। मतलब एक की जो समस्या है वो दूसरे की नहीं, उसका वो लाभ है, इसको समस्या नहीं है। एक की समस्या दूसरे का लाभ, ये वास्तव में समस्या नहीं है। समस्या वो है जो सबकी होती है, बीमारी सब बीमार पड़ते हैं, सबकी, डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर कहेंगे कि बीमार पड़ गए तो हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, लेकिन वो भी बीमार पड़ते हैं, बूढ़े बुढ़ापा ओल्ड एज सबको आता है, जन्म सब लोग मृत्यु, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है, इस बात पे जो विचार ही नहीं करता है वो कृपण है। यहाँ अर्जुन कौन सी समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं, स्वयं अर्जुन स्वयं तो करे कार्पण्य दोष बहुत बात मेरे लिए कृपण का आग्रह है, स्वयं अर्जुन कह रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब वो सब बोलने लगे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए अभी उनको ज्ञान था, अभी तक वो बोल रहे थे मुझसे कृपण बोल दिया अपने आप, मतलब जो समस्याओं को समझ ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति जो समस्या अपनी वास्तविक समस्या, हमारा भी हम भी सब यदि समस्याओं का निराकरण करने की ओर हम नहीं बढ़ते हैं, हम भी कैसे हैं, कृपण तो है। फर्क हमारा और अर्जुन का इतना ही कि अर्जुन बोल दिया कि मैं कृपण हूँ, हम अभी तक भी बोले अकेले कृपण नहीं, हम भी कृपण है, बोल देंगे तो तुरंत भगवान बोलना, संसद भक्त तो आप सब बहुत भाग्यशाली है जो आप सब ने बोल दिया है, इसलिए तो सत्संग में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से दूसरे और कृपण की व्याख्या होती है, जो बिना आत्मज्ञान के प्राप्त किए, जानवर के जैसा, प्राणियों के जैसा, कुत्ते बिल्लियों के जैसा देह त्याग करते हैं, मृत्यु तो सबको आता है, कुत्ते को भी आता है, बिल्ली को भी आता है और मनुष्य को भी आता है, तो मनुष्य के मृत्यु में और जानवरों के मृत्यु में क्या फर्क है, तो बता सकते हैं, मनुष्य भी की मृत्यु मनुष्य का भी होता है, कुत्ते का भी मृत्यु होता है, डिफरेंस क्या है, वह भी आत्मा शरीर त्याग कर देता है, ये भी शरीर त्याग, मनुष्य भी शरीर छोड़ता है, प्राणी भी शरीर छोड़ता है, डॉग भी शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने में डिफरेंस क्या है, मृत्यु मृत्यु शरीर छोड़ते वक्त क्या डिफरेंस हुआ, मनुष्य क्या करता है, हाँ वो तो हम यार, कुत्ता भी कोई भी बहुत अच्छा रहता है, सालों तक लोग नहीं भूलते कह रहे उसने इतनी चोरियां हमारी चोरियां 4 बार बचाया हमने, इतना अच्छा कुत्ता था, उसके भी कदम याद रहते हैं, हाँ तो उसकी आखिरी इच्छा मनुष्य की हो सकती है कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसे कुत्ते की भी यही इच्छा रहती है, इनका ये कहाँ से उसको खाने को मिलता है, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, मनुष्य की भी आखिरी इच्छा ही हो सकती है, कहाँ से सब कुछ, मेरे बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे ठीक है कि नहीं, तो इच्छा में भी क्या डिफरेंस कुछ है, हाँ और कुत्ते के मृत्यु में केवल एक फर्क हो सकता है, यदि हम रखे तो भी नहीं होगा। यदि हम रखे वो फर्क, वो क्या है, मरने के पहले आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, मृत्यु के पहले भगवत ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो कुत्ते के मृत्यु में और हमारे मृत्यु में डिफरेंस रहेगा। परंतु हम भौतिक संसार में देखते हैं, बड़ी कठिन बात है, कहते हैं कि अहो दुखम महादुखम दुखा दुख परंतर, मतलब अहो दुखम महादुखम दुखा दुख तथम यत काचार्थम विस्मृतम रत्नम, काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरेर नामेव केवल, अहो दुखम महादुखम दुखात दुखात परम यत। भाई कितने दुख की बात है, सारे संसार में जितने दुख है उन सारे दुखों का जो दुख है परम दुख, इतना सबसे बड़ा जो दुख है वो ये दुख है कि क्या दुख है, काचार्थम काश के काचार्थम विस्मृतम रत्नम, काश के टुकड़े के लिए रत्न को हम भूल रहे हैं, काश के टुकड़ों को एकत्रित करने के लिए लगे पड़े हैं और उधर रत्न हमारे बाजू में रखा हुआ। रत्न क्या है, हरे नाम केवलम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे बड़ा कोई दुख है, तो इससे बड़ा इसलिए दुख नहीं है क्योंकि यदि ये हम हरे नाम वाला रत्न नहीं उठाते तो कुत्ते की मौत मरते हैं। ये कहावत अच्छी तरह से संसार को समझ में नहीं आई, अरे क्या कुत्ते की मौत मरेगा ऐसा बोलते हैं, लेकिन समझ तो नहीं, कुत्ते की मौत तो तभी मरेंगे जब ये रत्न को नहीं उठाएंगे, हरे नाम रूपी रत्न को यदि स्वीकार नहीं करेंगे, काश के टुकड़ों में कोई एकत्रित करते रहेंगे तो मृत्यु के जैसा मृत्यु पाए, मृत्यु तो है नहीं, मृत्यु टलेगा किसका है नहीं। इस प्रकार से भौतिक भ्रम में नहीं रहना चाहिए, भौतिक भ्रम मतलब जंगल में लगी हुई आग, शास्त्र में कहे उदाहरण आपने ध्यान से सुना है, जंगल में लगी हुई आग है इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, जंगल में आग कौन लगाता, कोई व्यक्ति जाता है लगाने को, कौन लग जाती है, हवा लगा देती है, हवा आती है दो पेड़ों के बीच में घर्षण होता है और आग लग जाती है, पूरा जंगल भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से कलियुग में भ्रम रूपी या माया रूपी या कली रूपी हवा समस्याओं का या भ्रम का आग लगा देती, भ्रम रूपी आग इतनी तेज हो जाती है कि सारे संसार में किसी भी दो जीवों का दो लोगों का दो व्यक्तियों का आपस में पचता ही नहीं, आग लगी पड़ी है क्या पता, हर एक व्यक्ति दूसरे को खाने के लिए तैयार है, तैयार है उसको हराने से, क्योंकि भयानक आग लगी हुई है। इस आग को जंगल के आग को कौन बुझाता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कौन बुझाता है, बॉम्बे का अग्निशमन दल नहीं बुझा सकता चाहे कुछ भी कर, उसके लिए भगवान की बारिश आती है और बुझाती। हमारी जो आग है अज्ञानता रूपी आग भ्रम रूपी आग, इसको यदि हम बुझाना चाहते हैं तो ये भी कोई बुझा नहीं सकता, इसी को भी भगवान ही बुझाते हैं, दूसरा कोई नहीं बुझा सकता। भगवान के पास अर्जुन जा रहे हैं इसका अर्थ ही है कि अर्जुन के मन में जो आग लगी पड़ी है भ्रम की, उसको बुझा रहे भगवान। हाँ कोई मेडिटेशन वाला नहीं आया है, आर्ट ऑफ लिविंग के नहीं आएगा आपको सिखाते, जो आग लगी है आग बुझी नहीं, उससे जो कोई भी आग सिखाने वाले सारी आग फेल है उस आग के सामने, यदि वो आग के सामने सारी आग सक्सेसफुल होती तो संसार में आज इतने दुख नहीं होते, कोई भी सारी आज तेरे क्यों नहीं गई आज तो फिर क्यों है मैंने भगवत कृपा भगवान ने कृपा की तो अर्जुन का कंफ्यूजन दूर हुआ। इस प्रकार से ये आग हमारे अंदर जो अज्ञान का रूपी भ्रम रूपी आसक्ति रूपी जो आग लगी है उसको हम हरि नाम के शरण में जाएंगे। भगवान का नाम भगवान से भी और जो है इसके ऊपर पहले बहुत बार चर्चा हुई है। तो भगवान का नाम भगवान से भी शक्तिशाली, तो भगवान का नाम लो और आत्म बुझाओ। यहाँ अर्जुन ने उसी प्रकार से भगवान के सामने जाकर कहा कि हा बने ऊपर हूँ मैं। इस प्रकार का ऊपर किस प्रकार का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस मनुष्य जीवन को किस प्रकार से उपयोग में लाऊं। इसका अर्थ है कि जो मुख्य समस्या है उसको मैं शायद समझ नहीं पा। अब अर्जुन यहाँ बात और वो गुरु के पास जाके बात कर यहाँ पे थोड़ी सी मित्रता को उन्होंने साइड में रख दिया। अर्जुन थोड़ा बदल उनमें हो रहा है। कौन सा बदल हो रहा है? थोड़ा बदल ये कि मित्रता, अभी तक तो खैर मैं इनको मित्र समझ रहा हूँ, मित्र ही है, मित्र इसलिए तो मेरे सारथी बन गए। पर अब मेरी समस्या बड़ी डेंजर है, ये समस्या इतनी भयानक है कि मैं सारथी को थोड़ी समस्या पूछ सकता हूँ। ये तो मेरे सारथी है, सारथी को मैं सारथी के रूप में देखू, सारथी को मैं प्रश्न पूछू, समस्या पूछू, उत्तर क्या मिलेगा? अपने ड्राइवर को यदि मैं अपना प्रश्न पूछू, भयंकर प्रश्न, गंभीर प्रश्न, ड्राइवर क्या उत्तर देंगे हमारे गंभीर प्रश्न? हमारे गुरु उत्तर देंगे। इसलिए अर्जुन ने उनको कहा कि अब मेरा आप शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, अब मैं आपको ना तो मित्र समझता हूँ, सारथी ना और कुछ भी, अब आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना और कल्याण की बातें वैसे भी अर्जुन अब चाहते कि वास्तव में उनको कल्याण होना चाहिए। अर्जुन के मन में थोड़ा सा अब बात आ रही है कि उनका वास्तव में कल्याण होना चाहिए, क्योंकि अब समस्या बढ़ रही है, शरीर कांप रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो कल्याण की बातें तो गुरु को ही पूछनी चाहिए। कल्याण यदि हम चाहते हैं तो श्री गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। इस प्रकार से इस श्लोक में अर्जुन चार बातें कर रहे हैं। क्या कहते हैं? चार बात, कार्पण्य दोष प्रमुख स्वभाव। अभी हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि मेरे में कृपणता आ गई है, इसलिए हमें पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं? चार बातें। कौन सी बात? कार्पण्य दोष प्रमुख स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म संघर्ष, पृच्छामि सब पूछ रहे हैं, पृच्छामि त्वां धर्म संघर्ष, शिष्यस्ते हम शादीमान त्वां प्रपन्न। फिर वो क्या कहे कि अब आप मुझे उपदेश दीजिए। पहली बात क्या है? पहली बात है कि पृच्छामि त्वां धर्म संघर्ष, पूछ रहे। दूसरी बात क्या है? ब्रूहितन्मे मतलब अब आप मुझे बताइए, मतलब उपदेश दीजिए। पहले तो बोले मैं पूछ रहा हूँ, फिर बोल रहे अब आप मुझे उपदेश दीजिए, मुझे बताइए। फिर तीसरी बार वो क्या कहेंगे? मुझे उपदेश दीजिए, शिष्य से हम मतलब मेरा शिष्य के रूप में स्वीकार करके मुझे उपदेश दीजिए। शिष्य से हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम मतलब मैं आपको शरण आ गया। मतलब देखिए कितना सिस्टमेटिक वो पूछ रहे हैं। गुरु के पास जाते हैं और पूछते हैं तो ऐसा कुछ भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, और इसका भी तरीका होना चाहिए। पहले तो पूछना चाहिए किस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण को, गुरु को, पहले कह रहे कि आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। श्री गुरु के पास जाते हैं तो उनसे पूछिए, गुरुदेव मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर वो ये कहिए कि कृपा करके आप मुझे बताइए। फिर कहिए कि मैं आपका उपदेश पालन करूंगा, मैं आपको शरण आ गया। भगवान को भी यदि आप मंदिर में भी जाते हैं तो इस प्रकार से बोलना चाहिए। गुरु ये तो अर्जुन भगवान कृष्ण के पास जा रहे हैं, शिष्य का गुरु की ओर जाना किस प्रकार से होता है वो इस श्लोक इसलिए कह रहे कि पूछ रहा पृच्छा मित्वाम धर्म सम्मूढ़ता, अभी तक कुछ पूछे ही नहीं आपने, अभी तक यदि प्रॉपरली ध्यान से सुना होगा भगवद गीता तो अर्जुन ने अभी तक कुछ पूछा ही नहीं, केवल बताया बस गुरु को बताया जाता है क्या, इसलिए अभी तक भगवान गुरु बने ही नहीं, अभी तक मित्र ही बने हैं इसलिए कुछ बोले ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जब तक मांगा नहीं जाता तब तक ज्ञान दिया नहीं जाता, इसलिए ज्ञान दिया ही नहीं जाता है मांगा जाता, क्योंकि अर्जुन अब पूछ रहे हैं अभी तक बता रहे थे। ये विद्वत्ता का लक्षण है, भगवान की सहनशीलता देखिए। हमारे सामने यदि कोई 40 श्लोकों तक पौना घंटा ऐसे आर्गुमेंट करे तो हम क्या करेंगे, एक काम के नीचे इतना क्रोध आ जाएगा कि चुप। लेकिन भगवान की सहनशीलता देखिए, भगवान होकर भी हमको तो थोड़ा ही बहुत कुछ भी ज्ञान नहीं है, आधा % भी ज्ञान नहीं है हमको, तो भी हम आर्गुमेंट को सहन नहीं कर सकते, तुरंत रिएक्शन देते हैं। अर्जुन क्या क्या नहीं बोला आर्गुमेंट में, तो ये डायरेक्ट आगे आप जो बोल रहे हो मुझे अधर्म लग रहा है, मतलब आप मुझे अधर्म की बात सिखा रहे हो भगवान होते भी, यदि आपको बोल रहे भस्त हो तो भी इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो तो इतना प्रयोग आ जाएगा। अर्जुन भगवान को ऐसे ही कहा, कृष्ण हो गया इस प्रकार की बातें बता रहे हो, वो भी उन्होंने सहन कर लिया, सुन लिया, कुछ नहीं बोले, केवल सुनते हैं। पर अर्जुन के लिए जब बात समझ में आई कि अरे अभी तक तो मैं स्वयं ही धर्म की व्याख्या कर रहा, अभी तक अर्जुन ही कर रहे थे, अभी तक केवल अर्जुन ही धर्म की व्याख्या कर रहे थे, अभी बोले हैं कि पृच्छा मित्वान धर्म सम्मूढ़ता, इसका अर्थ ये होता है कि संसार में कोई भी उठ के खड़ा होकर धर्म की व्याख्या कोई नहीं, ये धर्म है आजकल कोई कहा शिव धर्म, हिंदू धर्म नहीं, वैदिक धर्म नहीं, अभी नया धर्म है शिव धर्म, शिवाजी महाराज का धर्म, शिवाजी के पूर्व शिव धर्म, ऐसे अभी कोई कहता है हमने एक संप्रदाय देखा उधर जलगांव खंडे भुसावल साहब हम जाते हैं दूसरे में उस साइड में एक संप्रदाय ऐसे निकला तो बोले कि गले में माला पहनना पाप है, तो पहला काम उनके संप्रदाय के हेड जो है वो क्या करते हैं, लोगों के गले में की माला ही तोड़ते हैं, सारे जो वारकरी संप्रदाय वाले तो उसी माला पहनते, करोड़ों की संख्या में लोग वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में, पहला काम जा के उनकी माला कहते नया आधार में स्थापन हो, उनके धर्म का नाम क्या है पता है, राम। तो हमने उनको पूछा कि ये राम कौन सा है, ये आपके राम का क्या अर्थ होता है, और आपने कब इसका मैन्युफैक्चरिंग किया, इसका मार्ग क्या है, एक्सपायरी कब तक का है। तो यहाँ अर्जुन यही बता रहे हैं, अभी तक धर्म की व्याख्या स्वयं अर्जुन कर रहे थे लेकिन फेल होते गए, उससे हुआ क्या, समस्या बड़ी है कब हुई, उनको हमने ये कहा कि आपने नया धर्म बताया बनाया राम, क्या आपकी समस्या कम हो गई, लोगों के गले में की मालाएं आप तोड़ रहे हैं, क्या आप बीमार नहीं पड़ोगे, बूढ़े नहीं होगे, मृत्यु नहीं होगा आपका, कोई रोग आपको नहीं होगा, गारंटी दे रहे हो तो मैं भी तोड़ता हूँ मेरे गले में की माला नहीं, बताओ गारंटी दो, यदि आपको विश्वास है आपके धर्म से तो बताओ, और मैं तो एक भी आदमी के गले के माला को हाथ मत लगाऊ। हमारी कुछ थोड़ी बहुत कुछ साल पहले उनकी जरा डिबेट हो गया, जब आप महापाप करें अहो पाप सर्वोत्तम पाप करने वाले, तो इस प्रकार से ऐसे अनेक धर्म है, कोई भी व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाता है 100, 200, 500 हजार लोग उनसे मिल जाते कहते ये हमारा नया धर्म, तो यहाँ अर्जुन नया धर्म नहीं बना सका, वो एन ने बोला अंतिम वो ये कहा अर्जुन की क्या कहें कि धर्म सम्मूढ़ चेता, आप धर्म बताओ, इसका अर्थ ये होता है कि धर्म के प्रणेता केवल भगवान है, होता है कि नहीं होता है, ऐसा व्यर्थ होता है ना। अर्जुन कह रहे हैं अगर इच्छा नित्या धर्म संबंध, धर्म आप ही बता सकते कि जो धर्म आपसे आता है। फिर दूसरा है भूल तन में, मुझे बताइए अभी मैं आपको पूछ सकता हूँ क्या, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे बताइए भूल तन में। तो भूल तन में क्या बताइए, कल्याण का मार्ग बताइए, मेरा कल्याण किसमें होगा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम के पहले स्कंद में है, शौनक आदि ऋषिगण सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं, शौनक आदि ऋषिगण सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि आप पहले पहले स्कंद का पहले अध्याय में 19वां श्लोक है, सुनो 9वां श्लोक है, इसमें शौनक आदि ऋषिगण एकत्रित हुए हैं सूत गोस्वामी को शास्त्र के ऊपर, शास्त्र के ऊपर आधारित प्रश्न पूछने के लिए। उसमें वो प्रश्न पूछते हैं, आप कृपया सरल विधि से समझाइए कि अपने मतलब हमारे यहाँ जो सब कुछ इस संसार में जो जन सामान्य है, साधारण लोग है, उनके कल्याण का मार्ग क्या, उनका कल्याण कैसे। इसका अर्थ ये है कि वो सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि ये जन साधारण के कल्याण का कोई मार्ग आपने निश्चित किया है कि नहीं, और कौन सा है वो, क्या मार्ग है, क्या निश्चित मार्ग है। यहाँ पे भी कह रहे हैं कि धर्म सम्मूढ़ चेता, मतलब निश्चित तौर पे आप बता सकते हैं, तो बताइए भगवान धर्म क्या है। वो सेम बात ऋषिगण सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि जन सामान्य के कल्याण का जो धर्म है वो निश्चित तौर पे आप समझेंगे। इसी प्रकार इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज क्या लिखते हैं, ऐसा का ऐसा में फर्ता बहुत सुंदर लाइन है। प्रभुपाद जी कहते आध्यात्मिक कल्याण होने से भौतिक कल्याण स्वतः ही हो जाता है, अपने आप हो जाता है, करने की आवश्यकता नहीं। आध्यात्मिक कल्याण हो गया, भौतिक कल्याण हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण का उपदेश देते हैं। आप बोलेंगे आचार्य के पास जाओ, ऋषियों के पास जाओ तो आध्यात्मिक बात करते हैं, लॉटरी लगने की बात ही नहीं करते, भौतिक कल्याण की बात ही नहीं करते। तो भोपाल महाराज इसी के तात्पर्य में कहते हैं आध्यात्मिक कल्याण होने से अपने आप क्या हो जाता है, भौतिक कल्याण हो जाता है। इसमें केवल क्या चाहिए, पेशेंस, सहनशील, धीर चाहिए। आगे तीसरा पॉइंट, अर्जुन कहते हैं साथ इमाम अब मुझे उपदेश दीजिए, उपदेश दीजिए मुझे। अब ये बहुत महत्व की बात है, अभी तक अर्जुन बोलने के लिए उत्सुक थे, अभी सुनने के लिए उत्सुक है। अर्जुन सुनने के लिए देखिए उनकी उत्कंठा एकदम उत्कंठित है, श्रवण करने के लिए उपदेश दीजिए, मैं श्रवण कर सुनूंगा, श्रवण करना उत्कंठित हो गए, उत्कंठा इस शब्द का उत्कंठ कंठ को ऊपर उठा के बताइए उत्कंठा। तो भगवान के उपदेश कैसे सुनना चाहिए, उत्कंठित होकर एकदम। हम तो कई बार देखते हैं कि कथा चल रही है, सत्संग चल रहा है, किसी इधर उधर देश का आवाज आया तो चल रहा है, माता जी ने किसी ने ऐसा दूसरी माता जी आ गई, बैठी बैठी ये कथा चल रही है, ये उत्कंठा नहीं है। उपदेश ऐसे नहीं सुने जाते, कुछ भी हो जाए वाल्मीकि ऋषि पूरा लाफड़ा भर गया उनके चारों दिशा में, फिर भी डिस्टर्ब नहीं हुए। और हम जरा खुश हो गया कि कथा चल रही है भगवान भगवत गीता है, भगवान के उपदेश है, दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन जरा कुछ इधर टूर आवाज आया, उधर कुछ हवा आ गई, उधर पे देश का आवाज, कोई माता जी आधे घंटे बाद प्रवचन में आ गए, या कोई प्रभु जी आधे पौने घंटे बाद प्रवचन में, सब तो माता जी आएगी कुछ बोलेगी, तो सब चारों के सब 10-12-15 लोग जितने भी सब उनसे बात कर रहे हैं। हम अपनी बात तो यहाँ जी, मैं हर जगह देखा है, जहाँ सत्संग है वहाँ कुछ कुछ लोग कुछ ना कुछ नींद आ जाती है, नींद आ जाती है। ऐसे से भगवान का उपदेश समझ में नहीं आया, हो नहीं सकता उपदेश समझ में, आत्मज्ञान होगा ही नहीं। विज्ञान जो है वो जो भगवत ज्ञान है वो प्राप्त होगा ही नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं, और कुत्ते में हमारे में अंतर अंतिम अंत तक नहीं रहेगा, अंतिम समय तक हमारी उत्कंठा रहेगी ही नहीं। और अंतिम समय तक हमारी उत्कंठा नहीं रही तो अंतिम समय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। भगवत कथा सुनना है, उपदेश सुनना है तो उत्साहित होकर सुनिए, उत्कंठित होकर सुनिए। अर्जुन सुन रहा है इतना बड़ा भक्त है कि हम तो कुछ भी नहीं है, उत्कंठा चाहिए सुनने की, श्रवण करने की। तो इस प्रकार से परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय में ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद महाराज ने कहा है। अभी मैंने अपने मन की बात नहीं की है, श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं सुनिए। जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में उत्कंठित होकर सुनता है, मैंने भी कहा जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है कंठित होकर, उसके लिए वे शुभेच्छुक मित्र की तरह कार्य करते, उसके लिए भगवान उसके मित्र की तरह शुभेच्छुक मित्र की तरह कार्य करते। और जो भक्त उनका निरंतर श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं, और जो केवल श्रवण करता है उसके फ्रेंड बन जाते हैं, और जो निरंतर श्रवण करता है उसका क्या करते हैं उसको शुद्ध कर देते हैं। लेकिन श्रवण कैसा पहले बताया, उत्कंठित ऐसा थोड़ा इधर ध्यान थोड़ा उधर ध्यान, थोड़ा कुछ बोल रहे थे उसी का पड़ोस के काम है, बोल रहे सुन रहे कर रहे हो नहीं, सब बातों को छोड़ के पहले भगवत कथा भागवत कथा कोई भी भगवान की कथा चल रही उसको सुनिए। बाजू के आपके बाजू में मनमोहन सिंह आके भी बैठ गया निश्चित तो भी ध्यान मत दीजिए, सही ना, यही यही सदाचार है, यही भगवत गीता भागवत और शास्त्र का आदर है, तो निराधार है अपराध है। गुरु महाराज कहते हैं जहाँ कथा होती है सबसे पहले वहाँ बैठे हुए सभी को प्रणाम करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा है, इतनी उत्कंठा से वो बैठे हुए कथा श्रवण करनी, इसलिए अब हम यदि उत्कंठित नहीं होते हैं तो अपराध, कुछ बोलना नहीं है, केवल एक घंटा तो है सारा, एक भी एक डेढ़ घंटा ज्यादा से इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो उसे वो शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने शुद्ध दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। इससे होता क्या है, जो शुद्ध ज्ञान जो दिव्य ज्ञान है सुप्तावस्था में है अंदर सुप्त है, यदि वो ऐसा करता है तो वो भक्त फिर से उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है और वो कुत्ते की मौत नहीं मिलेगा, क्योंकि दिव्य ज्ञान उसको प्राप्त हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इसलिए गुरु का उपदेश, श्री गुरु का उपदेश, भगवान का उपदेश सुनकर उसका पालन करना चाहिए, उत्कंठा से सुनना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। आप कहेंगे प्रभुपाद महाराज ने लिखा है, तात्पर्य में ऐसा नहीं है। प्रभुपाद महाराज वही कुछ, वो सब कुछ लिखे जो उन्होंने करके दिखाया। 1922 में सर्वप्रथम श्री प्रभुपाद उनके गुरु महाराज को मिले भक्ति सिद्धांत। बचपन से उनके घर पर साधु संत आते थे। उनके पिताजी सत्संग साधुओं को बुला के उनको उनको अच्छा उनकी सेवा करते थे, उनको प्रसाद देते थे। उनमें से कई साधु थे भी, कई साधु नहीं भी थे, लेकिन वो अपना कार्य करते थे। प्रभुपाद महाराज को इतना उनके बारे में कभी कभी ये होता था कि ये तो साधु नहीं है ऐसे। इसलिए प्रभुपाद महाराज क्योंकि कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी थे तो इतना उनको वो नहीं था, परंतु उनको अच्छा लगता था। यदि कोई शुद्ध सात्विक साधु है तो उनके संग में वो जाते थे। किसी एक मित्र ने उनको एक दिन कहा 1922 में कि एक बहुत अच्छे शुद्ध साधु आए हैं, चलो उनको मिलने के लिए जाते हैं। प्रभुपाद जी क्या चलो सुनो। प्रभुपाद जी उनके साथ उस साधु को मिलने गए जो कौन थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। उनको मिले जैसे ही उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा तो बोले कि आप पढ़े लिखे लगते हो, अंग्रेजी जानते हो, आपकी इस दिव्य ज्ञान का, इस अपने आध्यात्मिक ज्ञान का, शास्त्र का प्रचार क्यों नहीं करते। ऐसे लोगों को प्रचार कीजिए जो अपनी भाषा नहीं जानते, केवल इंग्लिश जानते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ऐसा कीजिए। पहली मीटिंग, पहली बार प्रभुपाद जी ने उनको देखा और पहली बार गुरु महाराज ने सीखा। उसके बाद 1936 मतलब 14-15 कितने साल जो 1936 में सेकेंड टाइम जब प्रभुपाद महाराज मिले उनको, फिर भक्त बन गए, सब सेवा में लगे, बड़ी सेवा करने लगे। जब फिर भक्ति सिद्धांत को मिलने के लिए प्रभुपाद महाराज गए तो कहने लगे कि हे गुरुदेव, मेरे लिए क्या उपदेश, मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सी सेवा कर सकता हूँ, क्या उपदेश। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको कहा कि तुम अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते हो, पाश्चिमात्य देशों में जाओ और वो वहाँ के सारे लोगों को कृष्ण भावना भावित कर दो, शास्त्र का ज्ञान दो, जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम यदि ये कार्य करोगे तो सारा संसार, सारे वेस्टर्न कंट्रीज कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और प्रभुपाद महाराज ने जो गुरु की आज्ञा है उसका पालन किया। आज हम क्या देखते हैं, सारे संसार में जितने देश है, जितने बड़े शहर है, सब जगह प्रभुपाद की कृपा है, मंदिर है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का मंदिर। क्यों हुआ ये सब, उत्कंठा उत्कंठित होके गुरु महाराज के उपदेशों को सुना, समझा, पालन किया, सेवा किया, तभी तो जाके लिखा उन्होंने। ये आचार्यों के गुण होते हैं, संतों के गुण होते हैं। इसलिए आचार्य जो आचरण करते हैं वही आचार्य, तो उनके आचरण में दिखाया उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने सारे संसार में मंदिरों की स्थापना की और अपने गुरु महाराज के शब्द का। अब यहाँ पर अर्जुन यही कहने वाला है, अर्जुन कह रहा है कि मैं भी अभी आपको पूछ रहा हूँ, उपदेश दीजिए। जैसे प्रभुपाद महाराज कहे कि मेरे लिए क्या उपदेश है यार, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, कृपा करके मुझे कुछ उपदेश दीजिए। अर्जुन ने जो बात कही वही बात प्रभुपाद महाराज ने कही, मतलब इसीलिए तो ये भगवद गीता का नाम क्या है, वही बात प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं। मैं आदिशन में सत्साक्ष, वही तत्व तो है, वही सिद्धांत है जो अर्जुन ने उपदेश को पूछा और किया। बाबू अभी थोड़ी देर और नहीं करेगा अर्जुन, पर पूछेगा और, लेकिन शरणागति हो गई और आगे जाते हुए उपदेश। इस प्रकार से ये सब जो सेवा भक्ति कृष्ण प्रेम प्रभुपाद जी को मिला, तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि वो केवल उनके गुरु की कृपा से मिला। अभी अर्जुन भी अंतिम में ही गए, परिश्य वचनम था, आपके वचन को मैं करूँ। आगे है, अब अर्जुन कह रहे चौथा पॉइंट, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। त्वाम प्रपन्नम शरणागति। भगवत गीता का एसेंस क्या है? भगवत गीता यदि हम समझना चाहते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ भगवत गीता? शरणागति। यहां अर्जुन कह रहे हैं त्वाम प्रपन्नम आपन्न दोषो चूतस्वभाव धर्म संपूर्ण सेवा शिष्य से हम साधु नाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपको शरण आ गया हूँ, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, जो पहले शिष्य कहता है। और भगवान परम गुरु जो है भगवान कृष्ण कहे जगत गुरु कृष्ण मंदिर जगत गुरु सारे गुरुओं की सम टोटल करो और इन सबके जो गुरु हो जाते हो भगवान कृष्ण है। तो जो परम गुरु है जगत गुरु है वो श्री कृष्ण भगवान। अब वो क्या कहते हैं जब उनका शिष्य या उनका भक्त कहता है कि मैं आपकी शरण ले रहा हूँ तो भगवान क्या कहते हैं अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब शरणागति शिष्य ने शुरू की है तो भगवान उसको अप्रूव कर रहे हैं। यही से एकदम राइट बात है, एकदम सत्य है। यही करोगे हम त्वाम सर्वतापे दिलोक्षामि मोक्ष। इसलिए पूरी भगवत गीता में शरणागति, इसलिए ज्ञान यदि हम देखते संसार में बहुत लोगों को भगवत गीता एक हमको भक्त मिले तो बोले हमारे 700 श्लोक याद है, 700 श्लोक हमको याद है। प्रभु जी लेकिन भगवत गीता का प्रिंसिपल या सिद्धांत तो शरणागति है, 700 श्लोक याद करना नहीं। कहने का अर्थ ये है कि हमको याद करके या किसी भी प्रकार से कुछ भी इन्फॉर्मेशन को लेके हमारा अहंकार बढ़ना नहीं। जितनी जितनी भगवत गीता हम आगे सीखते जाएंगे उतनी उतनी हम नम्र होते जाएंगे। ऐसा यदि होता जाएगा तो समझना कि हमको भगवत गीता समझ में आ गई। और यदि ऐसा नहीं होते जाएगा तो समझना कि हमारे अंदर बहुत बड़ा फॉल्ट है, मशीन बहुत बड़ी डिफेक्टिव है, दुरुस्त करना चाहिए, स्पेशल अटेंशन चाहिए। तो इस प्रकार से शरणागति सर हरि भक्ति विलास में शरणागति के 6 प्रकार बताए। श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण का संकल्प करना, भगवान कृष्ण के भक्ति के अनुकूल जो आचरण है उसको अपनाना। इसका अर्थ क्या है? प्रतिदिन भगवान के सामने दीप जलाना, आरती करना, भगवान का नाम स्मरण कीर्तन करना, प्रसाद ही खाना तो पाना, प्रसाद ही पाना, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं पाना। ये भगवान कृष्ण के भक्ति के अनुकूल बातें। तो हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि हम शरण जाना चाहते हैं भगवान को तो शरणागति के 6 प्रिंसिपल है। इसमें का ये पहला है, क्या है? अनुकूल आचरण। दूसरा है प्रतिकूल जो बातें हैं उसका राग। प्रतिकूल बातें क्या है? श्री कृष्ण के जो द्वेष करते हैं, भगवान के जो द्वेषी लोग हैं उनसे दूर रहना, व्यभिचारी लोगों से दूर रहना, मांसाहारी लोगों से दूर रहना, मद्यपान करने वाले लोगों से दूर रहना। अभी हम रिक्शा में बैठ के आ रहे थे तो माता जी ने एक बोर्ड पढ़ा और हमको बताया उन्होंने, तो एक मदिरा का दुकान था ऋषि दारू का, उसका नाम क्या हो सकता है? वो इमेजिन भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। उसका नाम था गुरु कृपा, हरी कला भक्ति गुरु कृपा बार वाई शॉप, गुरु कृपा वाई शॉप। हमने बताया था जब बुराई अच्छाई का रूप लेके आती है तो वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक होती है। अब ये बुराई गुरु कृपा का गुरु कृपा वाई शॉप अच्छाई का रूप लेके वेरी डेंजरस, क्योंकि भक्त तो एक आधा भोला भाला आदमी सोचेगा कितना अच्छा नाम रखा गुरु कृपा, चलो इस व्यक्ति को मिलते अच्छा व्यक्ति गुरु कृपा नाम रखा, ये मांसाहार की दुकान का नारायण नाम रखा कृष्ण इस प्रकार से नाम। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये लोग बहुत भक्त बड़े हैं। नहीं, ये ऐसे लोग क्यों कि ये हमको पसंद नहीं। उनके अंदर जो द्वेष होता है सुप्तावस्था में होता है, दिखता नहीं। रावण के जैसा, रावण जैसा शादी बन के आया, उसी प्रकार से ऐसे शादी बन के आते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना। विश्वास, तीसरा पॉइंट, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण रक्षा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण रक्षा करेंगे, इस बात को पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान कृष्ण को अपने रक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जैसे द्रौपदी ने किया। द्रौपदी ने भगवान सब कुछ किया, बाकी से भाई भगवान कृष्ण ही मेरे रक्षक, उसमें पूरा रक्षक है, विश्वास। श्री कृष्ण भगवान की सेवा में जो लगा हुआ है, ऐसे भक्त के प्रति आदर रखना, और केवल इतना ही नहीं, स्वयं में भी उससे कुछ सीख के भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाना। आपको क्या लाभ है इसका अनुभव से, आपको क्या फायदा है? कृष्ण को दूर से बहुत अच्छा बोलने में क्या फायदा? कुछ फायदा उसमें घुसो, इस कॉल में घुस जाओ, भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लो, तब मानेंगे कि आप जो कह रहे हो सत्य बात है। भगवान बहुत अच्छे, भगवान है जोरदार है, इस कॉल भी बहुत जोरदार है, कोई मतलब नहीं ऐसी बातों का, झूठ जाओ तब समझ में आएगा। इसलिए केवल वो व्यक्ति बहुत अच्छे है, वो इस कॉल में से भगवान कृष्ण बहुत अच्छे, ये सब झूठ जाओ, सेवा करो, समर्पित भाव से सेवा करो। तो ये है पांचवा पॉइंट, सेवा में जुड़ जाना, अपने जीवन को मनुष्य जीवन में भगवत सेवा में जुड़ जाना। भगवान कृष्ण के सामने दीनता का भाव रखना, अपने नम्र विनम्र भाव रखना, नम्रता से। यानी कि आज मैंने 16 माला किया भगवान के सामने, आज मैंने 16 माला पूरी किए, हरे कृष्णा। भगवान के सामने नम्र भाव से जाना, तब जाके अर्जुन कैसा गया, अभी भगवान उसका मित्र है, अर्जुन का मित्र है भगवान कृष्ण, लेकिन कैसे गया? शिष्यस्ते हम, परंतप है वो, धनंजय है, मित्र है, फिर भी शिष्य। तो यदि हम भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो 16 नहीं, हमने 1 करोड़ मालाएं भी की होगी, तो भी दीनता का भाव होना चाहिए, नम्र भाव से जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के सामने रूपा महाराज तात्पर्य में कहते हैं, भागवत में तुनादपि के तुनादपि सुनी से तात्पर्य रूपा महाराज, भगवान का दर्शन इस प्रकार से लेना चाहिए, तुनादपि सुनी से, जो कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, भगवान को विनम्रता प्रिय है तथा अभिमान से अभिमान अप्रिय है, नुसरत विनम्रता प्रिय है। आप देखेंगे प्रभुपाद अपने आप को क्या कहते हैं, सेवक कहते हैं, सेवक होते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, दासानु 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 दास, कहते हैं कि गोपी भरतु पद कमलोर दासान 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 नंबर ऑफ टाइम दासान दास, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण के सामने विनम्र भाव से कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए। तो मुख्य बात यह है कि इस श्लोक का सार ये है कि गुरु के पास श्री गुरु के शरण में जाना चाहिए, शरणागति का स्वीकार, शरणागत होना चाहिए श्री गुरु को, श्री भगवान को, ये मुख्य सार है। कोई भी समस्या हो गुरु के पास जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि धर्म केवल भगवान ने ही बनाया है और वही उसको जानते हैं और गुरुदेव उसका ही प्रचार करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।